तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं।
भगवान कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधारय। जिस तरह से वायु जो है आकाश में सर्वत्र है, महान है, शक्तिशाली है, उसी तरह से ये जितने भी जगत में सारे भूत जो हैं वो सारे के सारे मुझ में हैं, मेरे पर आश्रित हैं। जैसे वायु आकाश में है वैसे सारे भूत मेरे में जानो। और ये भूत कैसे हैं भाई? सर्वभूतानि कौनते है? प्रकृति आंति मामिकाम कल्प क्षय। कल्प का क्षय जब होता है, जब प्रलय होता है, तब क्या होता है? सारे भूत जो है मेरी प्रकृति में आ जाते हैं, वो अव्यक्त हो जाते हैं। और कल्प आदो विसृजाम्य हम, फिर जो है कल्प के शुरू में जब नई सृष्टि आती है फिर से मैं उनको सृष्टि कर देता हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि प्रकृतिम स्वाम अष्टभ विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृति वसात। अपनी प्रकृति के वश में करके मैं प्रकृति से उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अस्वतंत्र, हम सब जो है ना अस्वतंत्र हैं। अस्वतंत्र मतलब हमारी इच्छा नहीं चलती है, सब कुछ जो है वो अविद्या के कारण, प्रकृति के कारण, वासना के कारण सब कुछ चलता है हमारा जीवन, हम उसमें स्वतंत्र नहीं हैं। तो भूत समुदाय को जो कि स्वभाव बस अविद्या के दोषों से परवश हो रहा है, बार बार रचता हूँ। भगवान कहते हैं बार बार मैं रचता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है जितनी बार भी जन्म लिए मृत्यु हुई, जन्म लिए मृत्यु हुई, हमारे हाथ में नहीं है, जैसे हम स्वतंत्र नहीं है, अवश्य हैं। क्यों है अवश्य? अविद्या के कारण। तब एक प्रश्न आता है कि तब जो आप भूत समुदाय जो विषम रचने वाले हैं, ये जितने भी भूत समुदाय हैं ये विषमता इसमें नजर आती है, एक समता नजर नहीं आती, सब एक किस्म के नहीं है। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई धनी है, कोई गरीब है, जन्म से ही नजर आता है सब। तो ये विषमता भगवान आप जो रचते हैं, भगवान अभी ने कहा मैं ही रचता हूं ना, अगर आप रचते हैं तो इस विषम रचना जनित पुण्य पाप से भी संबंध हो आपका होगा। जब आपने रचना की विषम, तो विषम लोग जो भूत लोग जो मनुष्य लोग जो हैं, जो लोग पाप पुण्य करते हैं, तो इसमें इससे भी आपका संबंध होगा। रचना आप करते हैं, जब सृष्टि आपकी है तो सृष्टि के बाद में जो सृष्टि के अंदर जो लोग हैं जो पाप पुण्य करते हैं, वो भी फिर उसके लिए आप ही, आपका भी संबंध होगा उससे, उस पाप पुण्य से। तो ऐसी शंका होने पर भगवान ये वचन कहे, न च मामतानि कर्माणि निभग्नन्ति धनंजय उदासीन वतासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये भूत समुदाय की विषम रचना निमित्तिक वे कर्म मुझ ईश्वर के बंधन में नहीं डालते। हमारे कर्म जो हैं उसको ईश्वर को बंधन में नहीं डालते, हम जीव बंधन में पड़ते हैं, ईश्वर नहीं पड़ता है। अब उन कर्मों का संबंध न होने में कारण बतलाते हैं, क्यों नहीं भगवान को बांधते हैं, क्यों हमें बांधते हैं, कारण बताना होगा। तो भगवान कारण बताते हैं कि मैं उन कर्मों में उदासीन की भांति स्थित रहता हूं, अर्थात आत्मा निर्विकार है, आत्मा कुछ नहीं करता है, निर्विकार है, आत्मा में कोई कर्तापन नहीं है। इसलिए जैसे कोई उदासीन, उदासीन उदासीन मतलब उपेक्षा करने वाला, अपेक्षा नहीं उपेक्षा, अपेक्षा माने किसी चीज को अपने को ग्रहण करना, मेरे को ये चाहिए, उपेक्षा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे साथ इसका कोई लगाव नहीं है, उपेक्षा करने वाली स्थिति ही उसी की भांति मैं स्थित रहता हूं, मैं उपेक्षा करता हूं उन कर्मों को, उसी की भांति रहता हूं, तथा उन कर्मों में फल संबंधी आसक्ति में और मैं करता हूं इस अभिमान से भी मैं रहित हूं। तो भगवान के अंदर दो चीजें हैं, कर्तापन नहीं है और कर्मफल की स्पृहा नहीं है, कर्मफल की स्पृहा नहीं है, ये दो चीज नहीं है बोल के भगवान बंधन में नहीं पड़ते हैं। इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान का अभाव और फल संबंधी आसक्ति का अभाव, ये दो अभाव हैं भगवान में, कर्तापन नहीं है, कर्मफल की भी स्पृहा नहीं है, दूसरों को भी बंधन रहित कर देने वाला है। भगवान कहते हैं अगर तुम भी ऐसा करोगे तुम्हारा भी बंधन कट जाएगा। क्या हमको करना है? सब काम कर्तापन छोड़ के करना है, कर्तापन छोड़ के करना है, और कर्मफल की स्पृहा नहीं होनी चाहिए, तो हम भी बंधन रहित हो सकते हैं। इसके सिवा अन्य प्रकार से किए हुए कर्मों द्वारा मूर्ख लोग कोषाकार रमेश के रेशम के कीड़े की भांति बंधन में पड़ते हैं। अगर आप इस तरह से कर्म नहीं करोगे, किस तरह से? बिना कर्तापन के और बिना कर्मफल की स्पृहा से, ये दो चीजें अगर नहीं मान के आप कर्म करोगे तो क्या होगा? रेशम का कीड़ा जैसे अपने चारों तरफ अपने धागा बना के उसी में बंध जाता है, उसी तरह हम भी अपने कर्मों के बंधन में बंधते जा रहे हैं। कब हम उस बंधन से मुक्त होंगे? जब कर्तापन जाएगा और जब हमारे में कर्म फल की कोई स्पृहा नहीं रहेगी। अब भगवान कहते हैं यहां यह शंका होती है कि इस भूत समुदाय को मैं रचता हूं तथा मैं उदासीन की भांति स्थित रहता हूं। मैं रचता भी हूं और उदासीन भी हूं, उपेक्षा करता हूं, तो ये तो लगता है कि ये परस्पर विरुद्ध है ना, मैं ही रचता हूं और मैं ही उससे जो है कोई अपेक्षा नहीं रखता, मैं उदासीन हूं, ये परस्पर विरुद्ध है। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं दसवां श्लोक,
मयाध्यक्षेण प्रकृति,
मयाध्यक्षेण प्रकृति
सूयते सचराचरम,
सूयते सचराचरम
हेतुनानेन कौन्तेय,
हेतुनानेन कौन्तेय
जगद् विपरिवर्तते,
जगद् विपरिवर्तते
मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते।
मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, हे कौन्तेय मेरी अध्यक्षता, मेरे सुपरविजन में, मेरे नियंत्रण में ये सारी प्रकृति क्या करती है? चर अचर सहित सर्व जगत की रचती है। कौन रचता है? प्रकृति रचती है। किसकी अध्यक्षता में? परमात्मा की अध्यक्षता में। और जगत विपरिवर्तते, और इस तरह ये संसार चक्र घूम रहा है, संसार चक्र चलता जा रहा है, प्रकृति करती जा रही है। तो भगवान की उपस्थिति में माया शक्ति चर अचर स्थावर जंगम सृष्टि की रचना करती है। तो इसमें भगवान कैसे हैं, परमात्मा कैसे हैं? सन्निधि मात्र न, केवल प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। भगवान करते नहीं है कुछ, केवल सन्निधि मात्र है, केवल प्रेजेंट है। ये चीज आपको विवेक चूड़ामणी में ये वर्ड मिलेगा, सन्निधि मात्रेन। हम लोगों ने पंचदशी में भी इसको पढ़ा है, वाक्य वृत्ति में भी ये वर्ड आया, सन्निधि मात्रेन, केवल उनके प्रेजेंस है, बस दैट्स ऑल। उसके बाद प्रकृति अपना सृष्टि करना शुरू कर देती है। अनेन हेतुना, अनेन हेतुना का मतलब है मैं प्रकृति को शक्ति देता हूं, मेरे प्रेजेंस में ही शक्ति को, प्रकृति को शक्ति मिलती है, माया को शक्ति मिलती है, और मेरी शक्ति से युक्त माया कार्य करती है। कार्य कौन करता है? माया करती है। कब करती है? भगवान के प्रेजेंस में, सन्निधि मात्रेण, सन्निधि मात्रेण। जगत विपरीतते, जगत पुनः पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता है। बी परिवर्तते में बी का मतलब पुनः पुनः है, यह परिवर्तन चलता रहता है। और मैं कैसा हूं? बोले मैं राजा बतू, मैं राजा बतू। देखो आत्मबोध में यह श्लोक आता है, देह इंद्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणम तद्वृत्ति साक्षी नाम विद्यात आत्मानम राजवत सदा। मैं आत्मा राजवत की तरह, राजा की तरह हूं। मेरे प्रेजेंस में मन बुद्धि इंद्रियां प्रकृति सब काम करना शुरू कर देती हैं। केवल मेरी प्रेजेंस में, मेरी उपस्थिति में सब होता है। और सारी सृष्टि कैसे बनती है? सब अपनी अपनी वासना से बनते हैं। अब देखो आप एक बगीचे के अंदर में आप आम का पेड़ लगा दो, बगल में नींबू का पेड़ लगा दो, और उसके बगल में मिर्ची का पेड़ लगा दो, सब एक ही धरती से ले रहे हैं ना खाना, मगर उनकी सबकी वासना अलग अलग है। एक नींबू बनाता है, एक मिर्ची बनाता है, एक आम बनाता है, देखो एक ही जगह है सब। ठीक उसी तरह हम सब में आत्मा या नारायण एक है, नारायण एक है, मगर हम सबकी वासना अलग अलग है, हमारी वासना अलग अलग है, उसके हिसाब से हमारी उपाधि जो उस हिसाब से काम करती है, जिसकी जैसी वासना उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे सूर्य की उपस्थिति में वनस्पति उगती है, सूर्य अगर नहीं होगा तो वनस्पति नहीं होगी, उसी तरह अगर परमात्मा ना हो, अगर आत्मा ना हो, अगर ब्रह्मन ना हो, तो ये सृष्टि नहीं बनेगी। उपस्थिति वहां चाहिए ही चाहिए। तो ये कैसे सृष्टि शुरू होती है, प्रश्न ये होता है, तो हमको तैतरीय उपनिषद के अंदर ये आता है, सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये थी तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत। उन्होंने अपना संकल्प किया, संकल्प कहाँ हुआ? मन तो उनका नहीं है, मन वगैरह सब जो है, माया जब जुड़ती है तभी संकल्प होता है, पहले संकल्प नहीं होता है, ब्रह्मन में संकल्प नहीं होता है। जब उनका माया के साथ में सन्निधि मात्र, उनके प्रेजेंस में जब सृष्टि होती है तब ये संकल्प आता है, और उसके बाद में सृष्टि शुरू हो जाती है। तो क्या उदासीन और विसृजवामी विरोधी हैं? नहीं, विरोधी नहीं है। मेरी उपस्थिति में होता है, मैं उदासीन हूं, मेरी उपस्थिति में प्रकृति काम कर रही हो, मगर प्रकृति क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसके लाभ नुकसान पाप पुण्य से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उदासीन हूं। और मेरी उपस्थिति में विसृजवामी, मेरी उपस्थिति के अंदर सृष्टि हो रही है, सृजन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? क्योंकि मैंने प्रकृति को जो है शक्ति दे दी ना, अब वो प्रकृति क्या करती है, मेरे ऊपर में अध्यारोप करती है। हमने कई बार आपको बताया है कि सारी सृष्टि जो है उस आत्मन उस ब्रह्मन के ऊपर में अध्यारोप है, तो प्रकृति क्या करती है, अध्यारोप करती है। आधार कौन है? आधार वो परमात्मा है, वो ब्रह्मन है, जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, उसकी उपस्थिति के बिना कुछ काम भी नहीं हो सकता। तो यहां पर भगवान जो है दो स्तर पर बात कर रहे हैं। परमार्थिक स्तर पर भगवान कहते हैं हम उदासीन हैं, हम अकर्ता हैं, हम असंग हैं, हम सृष्टि के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, केवल हमारी उपस्थिति में सृष्टि होती है। और व्यवहारिक स्तर पर भगवान कहते हैं विसृजामी पुनः पुनः, भगवान अपने ऊपर कर्तृत्व सुपर इम्पोज करते हैं, मगर खुद नहीं कुछ करते, खुद नहीं करते, कौन करता है? प्रकृति करती है, प्रकृति सृष्टि करती है। तो ये भगवान की अपार शक्ति है, पार सकती है, जिसके प्रेजेंस के अंदर प्रकृति अपना काम करना सकती। अच्छा ये कितनी शक्तिशाली शक्ति है, कितनी इसमें ताकत है, तो हमको अगर हम देखें तैतरी उपनिषद में आता है विषास्मात बाता पवते विषो देती सूर्यतः, उसके भय के कारण ये वायु जो है चलती रहती है, रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? भय है, जैसे कोई ब्रह्मास्त्र लेकर उसके पीछे खड़ा हो। जैसे हमारा मैनेजर जहाँ हम काम करते हैं मैनेजर पर सिर पर खड़ा हो तो हम ऐसे सिर उठा के भी नहीं देखते, काम करते रहते करते रहते करते रहते नहीं। सूर्य क्यों टाइम से उगता है, उदय होता है? अजीब कोई पीछे में खड़ा है उसका, शक्तिशाली कोई ब्रह्मास्त्र लेके खड़ा हुआ है, ऐ उठो तुम करो काम करो काम करो काम करो, इस तरह से वो करते हैं। तो निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म को समझना कठिन है। मैं कभी कभी मनुष्य रूप में भी आता हूँ, भगवान अभी बताने वाले हैं कि कभी कभी हम अवतार भी लेते हैं। तो निर्गुण रूप से चेतन उदासीन है, उदासीन वर्ड आया ना, निर्गुण रूप से चेतन उदासीन है। सगुण रूप से चेतन उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, सृजन होता है, विसृजामी पुनः पुनः मैं सृष्टि करता हूँ, और अवतार के रूप में मैं कई बार आप लोगों के सामने आता हूँ, उपलब्ध हूँ, कई बार आते हैं भगवान अवतार लेके, मगर कई लोग पहचान नहीं पाते हैं, कई लोग क्या बहुत लोग नहीं पहचान पाते हैं। तो ये भगवान अब कहते हैं कि क्यों नहीं लोग पहचान पाते हैं, क्या होता है।
अवजानन्ति मां मूढ़ाः,
अवजानन्ति मां मूढ़ाः,
मानुषीं तनुमाश्रितम्, मानुषीं तनुमाश्रितम्, परं भावं अजानन्तः, परं भावं अजानन्तः, मम भूतमहेश्वरं,
मम भूतमहेश्वरम्।
अवजानन्ति मां मूढाः, मानुषीं तनुमाश्रितम्, परं भावं अजानन्तः, मम भूतमहेश्वरम्।
मेरे परम भाव को न जानने वाले मूल लोग, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को नहीं जानते, नहीं जानते। मेरे को एक मनुष्यधारी तुच्छ आदमी समझते हैं, मेरे जैसा ही है ये तो, मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। भूत महेश्वरम, भगवान कहते हैं मैं कौन हूं, हर भूतों का ईश्वर हूं, महाईश्वर हूं, भूत महेश्वरम। जैसे सर सब आभूषणों का ईश्वर सोना होता है, जैसे सब तरंगों में ईश्वर जल होता है, उसी तरह सब जितने भी भूत हैं ना उसके अंदर ईश्वर कौन है, भगवान है। भगवान कौन है तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, मैं भूतों में से एक नहीं हूं, ये सारे भूत मेरे पर आधारित है। अभी हमने बताया ना आधार में भगवान है, प्रकृति क्या करती है, सुपर इम्पोज करती हो, सुपर इम्पोज करती है। मम परम भाव अजानंत है, मेरे परम भाव को नहीं जानते, मैं कौन हूं, अरे जब मैं मनुष्य शरीर लेके आता हूं मैं अभी भी सच्चिदानंद हूं। और भगवान अपने बारे में बता चुके हैं, मत्त परतरम ना न किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, डोंट थिंक मेरे ऊपर भी कोई ईश्वर है। और मया ततम इदम सर्वम, मैं व्याप्त हूं, सारे संसार में व्याप्त हूं, सब जगह एज ए प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंस तो मैं ही हूं, मैं भूत महेश्वर, मगर मेरे परम भाव को लोग नहीं जानते, मैं कौन हूं लोग जानते नहीं है। अच्छा, मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्यों की सुलभता के लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करता हूं ताकि भक्त शरण ले सके। मूढ़ा माम अवजानती, अवजानती माने न जानाती, मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे को नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, बोले पापी हैं ये लोग, जो पापी हैं वो जान नहीं पाते। ना आद्रियंते, मेरा आदर नहीं करते, वो उससे ज्यादा पापी हैं, पापी तर। एक तो भगवान को नहीं जानते हैं वो तो पापी हैं, और उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, वो पापी तर हैं। और जो उनकी निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं निंदा करते हैं, वो पापीतम है। जो लोग भगवान की निंदा करते हैं वो पापीतम है। देखो अज्ञानी क्या करते हैं, परमात्मा को नहीं मानते, बहुत लोग हैं परमात्मा को नहीं मानते हैं, या वो निराकार है, कैसे साकार हुआ, कैसे साकार हुआ, हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा मानते हैं। जैसे हम सब मानते हैं ना आत्मा हमारे पास है, मगर हम अपने को आत्मा नहीं मानते, हम क्या मानते हैं, शरीर मानते हैं। बीसों वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो,
मानते हैं? नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? अज्ञानी है.
अज्ञानी ऐसा मानते हैं, अवतार नहीं मानते, जगत का कारण भगवान है, परमात्मा है, नहीं मानते हैं. वो बोलते हैं ऐसे ही जगत है, ये पंच महाभूत अपने आप में मिलते रहते हैं और सृष्टि होती रहती है. और बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे पान का पत्ता हरा होता है, चूना सादा होता है, कत्था ब्राउन होता है, मगर मिलकर लाल हो जाता ना. बोलते हैं ऐसे ये भूत जो ऐसे मिलते रहते हैं और ये सृष्टि होती रहती है, परमात्मा और परमात्मा कोई नहीं होता है. ऐसा लोग कहते हैं, अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं. और कई लोग तो ऐसा कर देते हैं, भगवान, इसको भगवान कहते हो, ये तो ग्वाला है, ये तो गौएं चराता है, इसको आप भगवान कहते हो, उसको ग्वाला बना देते हैं. देखो ऐसा जो है लोग सोचते रहते हैं. अब वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की प्रकृति क्या होती है, राक्षसी और आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण बताते हैं. जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनकी क्या हाल होता है वो बताते हैं.
मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः
ये कौन लोग हैं? बोले ये अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी जीव हैं. इनके अंदर जो है तमस और रजस भरा हुआ है. इनके में क्या है? व्यर्थ आशा है, व्यर्थ कर्म है, व्यर्थ ज्ञान वाले विचित्त चित्त वाले अज्ञानी जन राक्षसी, राक्षसी मतलब तामसिक, आसुरी राजसिक और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं. मोहिनी प्रकृति डेल्यूडेड बराबर जो है डेल्यूडेड रहते हैं. हम लोगों ने तत्वबोध में जीव की परिभाषा पढ़ी है ना, रजस एंड तमस प्रधान, सत्वगुण थोड़ा होता है. तो मोग आशा माने व्यर्थ आशा, एकदम लाभदायक नहीं, उपकारी नहीं, जिस आशा को पूर्ण करने से कोई कृत्या नहीं मिलती है, कृतकृत्यता फुलफिलमेंट. हम लोग की कई आशाएं होती है ना, कामनाएं होती हैं, और अगर आप अपना को इंट्रोस्पेक्ट करो, चिंतन करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जितनी भी कामनाएं हैं वो सारी की सारी जो है अनात्मा के लिए है, भगवान के लिए नहीं है. आज आपने सारा दिन जो भी कुछ किया उसको सोच के देखो, आपने जो जो आशाएं जो जो कामनाएं पूर्ण की वो कैसी थीं, वो सारी की सारी संसार के रिलेटेड थीं. उससे क्या कभी आपको पूर्णता मिली है, कृतज्ञता फुलफिलमेंट हुई है, बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, कभी नहीं मिलता है. तो ये क्या है? बोले ये प्रेयस है, परमानंद प्राप्ति को छोड़कर सारी आशा मोघ है. अगर आशा अगर आपकी ये हो, ये कामना हो कि मेरे को परमानंद चाहिए, परमात्मा चाहिए, वो आशा आपकी ठीक है. उसको छोड़ के जितनी भी आपकी आशाएं और कामनाएं वो सारी की सारी व्यर्थ है. मोग आशा का मतलब गलत आशा. किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से ये आशा करना कि ये व्यक्ति ये वस्तु और ये परिस्थिति मेरे को कृतकृत्यता देगी फुलफिलमेंट देगी, कभी नहीं होगा. ये ऐसा ही है कि नमक से मिठास की चाह करना. हम ऐसे सोचे कि नमक हमको जो है मिठास देगा, मोग आशा, व्यर्थ आशा है ये, है ना. मोग कर्मान है, अगर आशा व्यर्थ है तो फिर कर्म ही व्यर्थ होंगे. क्यों? कर्म हम जितने भी कर रहे हैं सब तो अनात्म वस्तु के लिए कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं ये सारी अनात्म वस्तुएं छोड़कर हमको जाना है, फिर भी लगे हुए हैं. तो क्या हम अपना जीवन व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं अपना मूल्यवान जीवन, अस्थाई सुख के में व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं? अच्छा, महात्मा लोग कहते हैं जिस कर्म से भगवान नहीं जुड़े हैं वो मोक्ष कर्म है। देखो महात्मा लोग का बोलने का तरीका थोड़ा सा सीधा है, जिस कर्म में भगवान नहीं जुड़े हैं वो मोग कर्म है। कर्मयोग में भगवान जुड़े हुए हैं क्योंकि हम कर्मयोग भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। सकाम कर्म किसके लिए करते हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान उसमें नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए वो क्या हुआ? मोग कर्म है। दक्ष ने यज्ञ किया मगर शिवजी को नहीं बुलाया। देखो दक्ष का यज्ञ निष्फल हुआ था। ओईटी में सुख गंध मात्र नहीं है, शंकराचार्य जी कहते हैं, और हम जो है वो संसार में घूमते रहते हैं, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट में घूमते रहते हैं, सुख की जो है वहां अभिलाषा करते रहते हैं, मगर वहां गंध मात्र भी सुख नहीं है। जिस कर्म से चित्त शुद्ध ना हो वो मोग कर्म है। जिस कर्म से चित्त शुद्ध ना हो वो कर्म मोग कर्म है। किस कर्म से चित्त शुद्ध होगा? कर्म योग से शुद्ध होगा। अच्छा अब वो कहते हैं मोग ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान है वो कैसे हैं? संसारी ज्ञान है, वो आत्मज्ञान नहीं है। ये संसारी ज्ञान कभी हमको मुक्त नहीं कर सकते। विद्या या विमुच्यते, विद्या उसको कहते हैं जो हमको मुक्ति दे। ये संसारिक ज्ञान क्या हमें मुक्ति देंगे? आप नोबेल प्राइज लेके ले आओ, आप बोलो कि हम मुक्त हो गए, कभी नहीं होगा। तो संसारिक ज्ञान जो है ये सारे के सारे विनाशशील चीजों का ही है। हमारा जीवन बिना असली वस्तु को प्राप्त किए खत्म हो रहा है, हमने अपना जीवन व्यतीत कर दिया विनाशशील चीजों के पीछे ही। मोक्ष ज्ञान क्या है? देखो जो लोग रेस हॉर्स में लगाते हैं ना पैसा, हॉर्स रेसिंग में, उनको जो है पूरे हर घोड़े का पूरी हिस्ट्री मालूम होती है, उसका नाम, उसका बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, उसका दादा कौन था, दादी कौन था, नाना कौन था, नानी का, पूरा। और जिस दिन दौड़ेगा उस दिन क्या खाया, उसके बाद उसने जो है पायखाना किया कि नहीं, कितना किया, हाउ मच, उसके बाद में उसके ऊपर जो बैठने वाला जो है उसके वजन कितना है, उसने ब्रेकफास्ट खाया कि नहीं, बिना ब्रेकफास्ट खाया, अब 5 ग्राम की 10 ग्राम उसका वजन कम होना चाहिए, अगर ब्रेकफास्ट खा लिया है तो 50 ग्राम बढ़ गया उसका, इतना खबर रखना पड़ता है। कितनी बार यह घोड़ा जीता है? अच्छा लोग जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं कि हमने बिच्छू के साथ में जो है अपने शरीर पर बिच्छू को रखा 20 घंटे तक रखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरा नाम लिख दो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लो। या मैंने ब्लेड को छिवा लिया, लो मेरा नाम रिकॉर्ड में लिख दो, किसी ने आज तक नहीं किया ऐसा, ये रिकॉर्ड रखते हैं लोग, ऐसा रिकॉर्ड रखते हैं। ये सब क्या है? मोह है। महात्मा लोग कहते हैं जिसने बहुत डिग्री हासिल की मगर सेवा नहीं शुरू की, उसकी सारी की सारी डिग्रियां मोग ज्ञान है, मोग ज्ञान है। अगर उस डिग्री से आपको अगर सेवा की तरफ प्रस्तुत कर दे, यहां आपको सेवा करनी है, तो ठीक है, अगर सेवा नहीं शुरू की तो मोग ज्ञान है। विचेतस है, कंप्लीटली ड्यूलिडेड, विगत चेतस है, ऐसे व्यक्ति की मन बुद्धि को भगवान विचेतस कहते हैं, यानी है ही नहीं उसमें। महात्मा कहते हैं वो आदमी पशु के समान है, पशु के समान है। अच्छा अधिकांश लोग जो है इसी किस्म के हैं, इसी किस्म संसार में फंसे हुए हैं, पीरस के पीछे दौड़ रहे हैं और रोते रहते हैं, संसार की निंदा करते रहते हैं, अनात्म से तादात्म करके, अनात्म वस्तु से तादात्म करके अपने को सुरक्षित समझते हैं, अपने को सुरक्षित समझते हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे इतने फॉलोअर हैं, मेरे इतने रिलेटिव हैं, मेरे को इतना सपोर्ट है, अपने को सुरक्षित समझते हैं इन सब, किससे? अनात्म वस्तुएं से। तो हमारी आशा अनित्य से, हमारे कर्म अनात्मा से सुख पाने के लिए, एवं ज्ञान अनात्म ज्ञान सब व्यर्थ है, हमारा जीवन जो है व्यर्थ जा रहा है, तो क्या काम करना छोड़ दें? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर तो खाना पीना संसार कैसे चलेगा। यहां भगवान का कहने का उद्देश्य है कि अपने लाइफ को बैलेंस करें, बैलेंस करें। संसार से आपको कितना चाहिए, आपको शरीर के लिए जितना चाहिए उतना ले लो। आप अपने आप को ऐसा नहीं समझो कि हम अगर सुरक्षित अब इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। क्या मालूम आपका पैसा रहेगा कि नहीं आपके पास में, आपने सारे जीवन में इकट्ठा किया। और आपने मान लीजिए यहाँ पर बैंक में तो कोई पैसा देता नहीं, सूद देता नहीं है, आप परसेंट भी नहीं देते हैं, तो आप फिर जाओगे शेयर मार्केट में, डाल दिया आपने सारी जिंदगी कमाई, इसमें डालो उसमें डालो उसमें डालो। अब पता नहीं मेरे को जॉनसन जॉनसन का शेयर गिरा कि नहीं गिरा, देखो कैसा होता है, कौन सी कंपनी ऊपर जाएगी कौन सी गिरेगी कोई पता नहीं है, कब गड़बड़ होगा। जब कोरोना आया सब शेयर मार्केट डल हो गए एक साथ सारी दुनिया के, तो हमारे पैसे कहाँ हैं, वहीं पड़े हुए हैं। हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। तो भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तब भी लोग भगवान को पाने का प्रयास नहीं करते, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म अवतार को पाने का कोई प्रयास नहीं है, तो उनके मन का स्वभाव कैसा है। तो भगवान यहां बताते हैं ऐसे लोगों का मन का स्वभाव है राक्षसीम, तामसिक प्रवृत्ति है उनमें। तामसिक प्रवृत्ति मतलब दूसरों को कष्ट दे के उनको आनंद होता है, ऐसे बहुत से लोग होते हैं, दूसरों को तकलीफ देंगे उससे उनको खुशी होती है। ऐसे लोग भगवान की निंदा भी करते हैं, उनका जीवन राक्षसी है, मोह आशा मोह कर्म मोह ज्ञान विचेतसा। और आसुरिम, आसुरिम वाले जो है वो राजसिक लोग हैं, राजसिक प्रवृत्ति है उनकी। आसुसु रमनते असुरा, इनकी इंद्रियां विषयों में रमन करती हैं, और खाओ पियो मौज करो ये इनका लक्ष्य है, ये भी भगवान का आदर नहीं करते। तो राक्षसी प्रवृत्ति वाले अज्ञानी लोग, आसुरी प्रवृत्ति वाले ज्ञानी अज्ञानी लोग, ये के सारे मोहिनी श्रिता मोहित हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके विपरीत दूसरे लोग होते हैं, वो कौन है, भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में,
महात्मानस्तु माम पार्थ, महात्मानस्तु माम पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः,
दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः,
भजन्त्यनन्यमनसः,
भजन्त्यनन्यमनसः,
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्,
ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्,
महात्मानस्तु माम पार्थ, दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, भजन्त्यनन्यमनसः, ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
ये आसुरी राक्षसी प्रकृति वाले भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं। दूसरे कौन है, महात्मनः, तू माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता, उनके पास में क्या है, उनके पास दैवी गुण है, दैवी प्रकृति वाले हैं, ये सात्विक लोग हैं। भजंती अनन्य मन से, वो मेरा भजन पूजन करते हैं, कैसे, अनन्य मन से, ज्ञात्वा भूतादिम अव्यम, वो मेरे को जानते हैं कौन, कि भाई ये भूति के आदि में यही है, यहीं से जो है सब सृष्टि शुरू हुई है। और वो बीज कैसा है, बोले अव्यम, मैं अव्यम हूं। भगवान कहते हैं कि तू शब्द जो यहां आया ना, महात्मना तू, तू माने पिछले श्लोक में चर्चित व्यक्ति से दूसरा भिन्न। पिछले श्लोक में कैसा व्यक्ति था, आसुरी राक्षसी प्रकृति वालों की चर्चा थी, अब भगवान महात्मा की कथा कहते हैं। तो ये महात्मा कैसे बने, अनेक जन्म के पुण्य से महात्मा बने, मगर रुद्रात्मा भी महात्मा बन सकता है। अच्छा, तो ये महात्मा कौन है, इनके पास में सत्य गुण प्रधान है और इनके पास में मन बड़ा है, इनका मन बड़ा है, ये मेरा तेरा नहीं करते, इनकी बुद्धि क्षुद्र नहीं है, ये सारे जगत को अपना परिवार मानते हैं, सारे जगत को अपना परिवार मानते हैं। ये महात्मा कैसे बने, दैवीं प्रकृति में आश्रिता, उन्होंने दैवी संपत्ति को अपनाया। दैवी संपत्ति क्या है, 16वें अध्याय का पहला दूसरा तीसरा श्लोक है, अभयम सत्संधि ज्ञान योग व्यवस्थिति, वहां पर सब दैवी गुण दिए हुए हैं, उनके पास में ये गुण है, उनकी ये संपत्ति है, दैवी गुण उनकी संपत्ति है। क्यों दैवी गुण हमको लेनी चाहिए, सात्विक गुण क्यों लेनी चाहिए, क्यों सत्वगुण में रहना चाहिए? क्योंकि सत्वगुण हमको मुक्ति की तरफ ले जाता है, रजो और तमोगुण हमको बंधन की तरफ और हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में रहता रखता है। अगर इस चक्कर से हमको निकलना है तो हमको किधर जाना होगा? सत्वगुण की तरफ जाना होगा। सत्वगुण कहाँ मिलेगा? गुण कहाँ लिखे हुए हैं? 16वें अध्याय के 1, 2, 3 श्लोक में, भूत आदिम अव्यम माम भजंती, मैं सब भूतों का आदि यानी कारण हूं, मैं सब भूतों का पालन करता हूं, मुझे आदर एवं पूजना चाहिए, मगर करते नहीं है। अभी हमको बताया, आगे बताया ना, आगे जो राक्षसी और आसुरी वाले लोग वो भजन नहीं करते हैं, पापीतर हैं वो लोग, और निंदा जो करते हैं वो पापीतम है। हमने वृक्ष को देखा है ना, वृक्ष अगर बनता है, हमने बीज डाला, वृक्ष हो गया, तो बीज क्या होता है? बीज नष्ट हो जाता है। मगर भगवान कहते हैं मैं कैसा बीज हूं? अब व्यम, मैं नष्ट नहीं होता हूं, मैं नष्ट नहीं होता हूं। माम शुद्ध परमेश्वर देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, मैं लोगों का कल्याण अनुग्रह करने के लिए अवतार लेता हूं। अच्छा, तो भगवान ने 3 शब्द यहां कहे, माम ज्ञात्वा, देखो आप श्लोक देखो, ज्ञात्वा सर्व आया ना 13वें श्लोक में, ज्ञात्वा एक है भजंती और एक है अनन्य मनसा, ये तीनों को तीन है, दूसरी लाइन के अंदर हैं। तो भगवान कहते हैं महात्मा भी 3 किस्म के हैं, 3 किस्म के महात्मा, ये 3 वर्ड जो हैं 3 किस्म के महात्मा को लक्षित करते हैं। ज्ञात्वा, ज्ञाता मतलब जानाती, क्या जानाती? मैं ब्रह्म हूं। ऐसे महात्मा भी दुर्लभ हैं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा जानने वाले महात्मा भी दुर्लभ हैं। भजंती, भजंती मतलब आद्रियंते, पूजा करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, ये दुर्लभतर हैं, दुर्लभतर हैं। और तीसरे अनन्य मनसा, वासुदेव सर्वमिति महात्मा स दुर्लभतम, सारा विश्व जो है वो कौन है? ये वासुदेव है। ये अद्वैत भक्त हैं, इसे पता है कि परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, यहां पर सब परमात्मा है। हम लोग वेदांत में भी देखते हैं कि अस्ति भाति प्रिय नाम रूप, हर वस्तु चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सबके अंदर ये 5 चीजें हैं। अनन्य मनसा मैंने क्या, अनन्य मनसा मतलब उनका मन जो है सिंगल पॉइंटेड है, वो ये जानते हैं मैं भगवान से भिन्न नहीं हूं, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं है, चाहते नहीं है, मगर भगवान की भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम भक्ति करने वाले महात्मा के बारे में, कैसे वो प्रेम करते हैं भगवान से, तो 14वें श्लोक में भगवान, 14वें श्लोक में यहाँ पर भगवान उनकी बात करते हैं कि वो कैसे है महात्मा हमसे प्रेम करते हैं।
सततम कीर्तयन्तो माम,
सततम कीर्तयन्तो माम,
यतन्तश्च दृढव्रताः,
यतन्तश्च दृढव्रताः,
नमस्यन्तश्च माम भक्त्या,
नमस्यन्तश्च
माम भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, सततम् कीर्तयन्तो माम, यतन्तश्च दृढव्रताः, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नित्ययुक्ता उपासते।
सततम कीर्तयंत माम यतंत दृढ़व्रता, उन्होंने दृढ़व्रत लिया हुआ है। क्या व्रत लिया हुआ है? कि हम भगवान का सततम कीर्तयंत, उनकी जो है पूजा कीर्तन बराबर करते रहेंगे। तो कैसे करते हैं? नमस्यंत, नमस्यंत, नमस्कार करते हैं। जब माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और ये भक्त नित्य युक्त हैं, नित्य युक्त हैं। तो 3 वर्ड यहाँ पर जो है बहुत मुख्य हैं, नित्य युक्त, नमस्त एंड कीर्तयंत, 3 किस्म से भक्त वो जो है उनकी पूजा करते हैं। भक्त्या सततम माम उपासते, वह भक्त भाव से मेरी उपासना करते हैं, भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं। हम उपासना 3 किस्म से कर सकते हैं, कैसे? काया से, वाचा से और मन से। कायिक, वाचिक एंड मानसिक, तीन किस्म से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। भक्ता नित्य युक्ता, नित्य युक्ता मतलब भगवान से जुड़ा रहता है, निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, नित्य युक्त, सततन नित्य युक्त चिंतन करता रहता है। कैसे चिंतन करता रहता है? तेल धारावत अभिच्छेद रूपेण माम अनुस्मृति, जैसे तेल की धारा जब हम डालते हैं ना तो उसमें कोई विच्छेद नहीं होता है, कंटिन्यूअस, कोई उसके अंदर ब्रेक नहीं है, उस तरह से कंटिन्यूअसली भगवान का जो चिंतन करता है। उपदेशार में आया ना, आज्य धारया श्रोत सासमम सरल चिंतनम विरलता परम, सरल चिंतन कंटिन्यूअस उनका हो रहा है। ये मानसिक भक्ति है, ये मानसिक भक्ति। अगर मान लो मन नहीं बैठ रहा है, मन में विच्छेप आ गया, हो सकता है ना, कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करते करते अब मन नहीं लग रहा है, फिर क्या करेंगे, नमस्यंत चमाम, वो भक्त फिर हमको क्या करता है, चित्त विच्छेप के कारण अब कायिक भक्ति शुरू कर दिया। मानसिक भक्ति थी कंटिन्यूअस चिंतन और भगवान, मन में विच्छेप हुआ, इमीडिएटली कायिक में आ गया। कायिक भक्ति क्या है? उसने जो है आके भगवान की पूजा वगैरह शुरू कर दी, भगवान की पूजा कर दी, नमस्यंत। जब तक मन सात्विक था तब तक वो नित्य भगवान का चिंतन करता रहा, जहां थोड़ा सा मन उतरा तुरंत उसने क्या ये किया, शुरू किया नमस्यंती, शारीरिक स्तर पर आ गया। अब नमस्यंती करते 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 अब उसको जो है थकान आ गई, शारीरिक थकान आ गई, फिर क्या करेगा, कीर्तयंत, तब भगवान का भजन कीर्तन स्तोत्र करना शुरू कर देता है। ये क्या हुआ, वाचिक भक्ति, मानसिक भक्ति, कायिक भक्ति, वाचिक भक्ति। देखो कंटिन्यूअसली वो भगवान का काम कर रहा है। जब सात्विक माइंड था भगवान का चिंतन, जहाँ मन थोड़ा सा इधर उधर भटका शरीर से भगवान के काम करना शुरू कर दिया, नमस्ते नमस्कार, जहाँ शरीर थक गया फिर कहाँ आ गया, फिर वो आ गया कीर्तयंत, वाचिक भक्ति में आ गया। यतंत्र दृढ़ता, दृढ़व्रत भक्त है, समदम आदि के सारे यह भक्त तीनों किस्म की भक्ति कायिक वाचिक मानसिक करते रहता है, उसकी भक्ति अविचलित है, कंटिन्यूअसली उसकी भक्ति चलती रहती है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। सततम उपासते, मन की जो भी स्थिति हो, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक, तामसिक मतलब उसका शरीर क्लांत हो गया, तामसिक मतलब सो नहीं गया, तामसिक मतलब उसका शरीर क्लांत हो गया, वह सदा भगवान के साथ में जुड़ा रहता है। देखो जुड़ा है कि नहीं, नित्य युक्त मन से युक्त, जैसे ही मन थोड़ा सा सत्वगुण से थोड़ा उतरा वो शरीर से शुरू कर दिया, शरीर जहां क्लांत हुआ तुरंत उसने वाचिक शुरू कर दिया, इस तरह वो जुड़ा रहता है। अब देखो हम संसार में भी प्यार करते हैं, ये तीनों चीजें घटती हैं, संसार में भी घटती हैं। अब मालूम नहीं आपके घर में किसी के यहाँ कुत्ता है कि नहीं, अगर आपको कुत्ते से प्रेम है तो आप उस कुत्ते का सदा चिंतन करते रहेंगे, जिसके घर में कुत्ता हो ना उसके घर में जाना आप, अगर आपका बहुत मित्र होगा ना तो सवेरे शाम तक उसके बारे में बताता रहेगा, आज उसने ये खेला किया, आज उसने ये खाया, आज ऐसा उसने किया, वो ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, उसकी लीला का गान होगा, उसकी लीला का चिंतन होगा। अगर उसका मन राजसिक है तो उसकी प्रशंसा करता रहेगा, कुत्ते की प्रशंसा करता रहेगा, और मन क्लांत हो गया तो कुत्ते को लेकर टहलने निकल जाएगा। आप देखते हो ना आपके डिवीजन के अंदर कुत्ते को लेकर टहलते हैं। तो देखो भक्ति है, भक्ति के अंदर एक साकाम हुई और निष्काम हुई है, भक्ति भक्ति के दो हुए, साकाम और निष्काम। साकाम के अंदर तीन किस्म के भक्त का है, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, आपको याद होगा ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, तीन किस्म के भक्त हैं, वो भगवान से कुछ चाहते हैं, सकाम। एक निष्काम हुआ, निष्काम के अंदर जो है दो किस्म के हुए, एक प्रेम भक्ति है, ज्ञान भक्ति। प्रेम भक्ति कौन है, ये अभी जो हम जिसकी बात कर रहे थे, जो मन से शरीर से वचन से कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करता है सततम कंटिन्यूअसली, इसको प्रेम भक्ति कहते हैं। इसके बाद में ज्ञान भक्ति आती है, प्रेम भक्त ज्ञान भक्त बनता है, प्रेम भक्त भी जो है आस्ते 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 वो ज्ञानी बनता है। तो कैसे बनता है वो अगले श्लोक में आता है।
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् बहुधा विश्वतो मुखम् ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्।
एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन यहाँ आप कहते हैं। भगवान ज्ञान यज्ञ न चपी अन्य यजंत माम उपासते एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे ज्ञानी योग मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म को ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हैं। ज्ञान यज्ञ में हम क्या देखते हैं? ज्ञान यज्ञ में देखते हैं कि मेरे और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, ब्रह्म और जीव एक है। और दूसरा मेरी उपासना और दूसरे बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को प्रतीक भाव से उपासना करते हैं। तो अन्य मतलब प्रेम भक्ति वाले जो है अब मन शुद्ध उनका हो गया। पहले हमको क्या करना है? मन शुद्ध करना है। कैसे मन शुद्ध करते हैं? जब मन हमारा भगवान में लगा रहे कंटिन्यूसली, या तो आप कर्म करो, कर्म योग बनाओ, और नहीं तो अगर भक्ति में जाना है तो आपको कंटिन्यूसली उनका चिंतन करना है, नहीं तो उनका नमस्कार करना है, नहीं तो उनका कीर्तन करना है। मतलब शारीरिक वाचिक मानसिक क्रिया कंटिन्यूसली भगवान की तरफ होनी चाहिए। इससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा। कर्मयोग से क्या होता है? मन शुद्ध होता है। क्यों मन शुद्ध होता है? हम 16 घंटा भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, बैक ऑफ द माइंड रहता है भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, कंटिन्यूसली उसमें भगवान रहते हैं, भक्ति में भी भगवान। उससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा। और जब मन शुद्ध होगा उसके बाद में क्या होगा? भगवान जो है उसे ज्ञानी भक्त बनाएंगे। ज्ञानी भक्त बनाएंगे मतलब अब उसके ज्ञान की व्यवस्था करेंगे, भगवान करेंगे, भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता है। भगवान ने गीता में बताया है ददामि बुद्धि योगम, ऐसे भक्तों के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ उनको ज्ञान देने के लिए। जैसे आपने देखा है, हमने कई बार आपको बताया है, ठाकुर रामकृष्ण काली भक्त थे। अब उसको जो है तोतापुरी कहाँ से, नॉर्थ इंडिया से पैदल चलते चलते आए, 150 साल पहले रेलगाड़ी नहीं कुछ नहीं था। क्यों? भगवान ने वहाँ प्रेरणा दी तोतापुरी को, तुम हमारा एक भक्त है कलकत्ता में जाओ, वहाँ पैदल आए वहाँ पर, तो उसको निर्गुण भक्ति, तुम सगुण भक्ति कर रहे हो, तुम केवल काली माँ करते हो, काली माँ के शरीर को तोड़ो। तो फिर वो माँ से जाके बोलने के कि किसको भेज दिया तुमने, ये आया है मेरे को बोलता है कि आपका काली माँ का शरीर काटो, ये करो वो करो, ये क्या है, मैं इसको सीखूं, इसकी बात मानूं कि नहीं? माँ ने कहा, काली माँ ने कहा करो सीखो, क्योंकि तत्व जानना होगा ना, काली के अंदर जो तत्व है, हमारे अंदर जो तत्व है, या जिस जो भी कोई देवी देवता है उसके अंदर तत्व एक ही है। अब वो जो है वो सिखाने के लिए तोतापुरी आए, तो किसने व्यवस्था की? भगवान ने व्यवस्था की। गुरु की व्यवस्था भगवान करते रहते हैं। तो वो गुरु कैसे आता है? मद अनुग्रह अवतार के रूप में गुरु बन करके आते हैं, भगवान ही आते हैं, और उसको क्रम मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाते हैं, फिर उसको सद्य मुक्ति वाला मार्ग। भक्ति करने से, कर्म और उपासना करने से हम ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। केवल कर्म और उपासना करने से हम हायर लोक में जा सकते हैं। फिर वहाँ जाके अगर वहाँ पर ज्ञान की व्यवस्था हुई तो मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और हमने कई बार बताया है कि ज्ञान की व्यवस्था केवल दो जगह है, एक ब्रह्मलोक में है और एक इस पृथ्वी के ऊपर में है। बीच के किसी लोक के अंदर ज्ञान की व्यवस्था नहीं है। आप स्वर्ग में भी जाओगे तो वहाँ ज्ञान की व्यवस्था नहीं है, वहां से वापस आ जाना होगा, अज्ञानी होके फिर वापस आ जाना होगा। तो अन्य ज्ञान यज्ञ ने चपि अभी प्रेमी भक्त से भक्त ज्ञान भक्ति की तरफ आया। अभी तक अपने आप को प्रेमी भक्त क्या कहता था, अंग अंगी, मैं भगवान का एक अंग हूं, ऐसा समझता था। अब ज्ञान के अंदर क्या करेंगे, ज्ञान के अंदर बताएगा कि अंग अंगी नहीं है, तुम ही हो, एक ही हो। उपाधि को छोड़ो, दोनों उपाधि को हटा दो, फिर जो चेतन तत्व हमारे भीतर है और चेतन तत्व जो भगवान में है वो एक ही है। वहाँ पर आत्मा ब्रह्म का एक का विचार करते हैं। और सबसे ऊंची भक्ति ये ज्ञान भक्ति, सबसे ऊंची भक्ति है, ज्ञान भक्ति सबसे ऊंची भक्ति है। तो पहले सबसे पहला नीचे का स्तर होता है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। उसके बाद होता है भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। और तीसरा वही मैं हूँ, भगवान मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न भगवान नहीं है। और आगे हम लोगों ने पढ़ाई है कि ज्ञान यज्ञ जो है द्रव्य यज्ञ से बेहतर है। द्रव्य यज्ञ से हमें क्या मिलेगा, द्रव्य यज्ञ का फल जो है द्रव्य मिलता है, अनित्य वस्तु मिलती है। ज्ञान यज्ञ से नित्य वस्तु मिलती है, नित्य वस्तु भगवान मिलते हैं, ब्रह्मन मिलते हैं, आत्मा मिलती है, वो नित्य है। इसलिए श्रेयान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। ओ अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ से तुमको जो कुछ ही मिलेगा वो अनित्य मिलेगा, ज्ञान यज्ञ से नित्य मिलेगा। अच्छा, सारे विश्व जगत को भगवान मानना ये सबसे ऊंची पूजा है, यह ज्ञान पूजा है। यहाँ भगवान को सर्वत्र देखता है, यानी हर वृत्ति में भगवान को देखता है, सारी वृत्तियाँ भगवान की तरफ जाती हैं, सारी वृत्तियाँ भगवान की तरफ जाती हैं। अब देखो ज्ञान यज्ञ भी जो यहाँ तीन किस्म का बताया, एकत्वेन पृथकत्वेन बहुता विश्वतो मुखम। एकत्वेन, एकत्वेन मन ब्रह्म एव अहम, मैं ब्रह्म हूँ, जो सृष्टि के पहले में जो था वही मैं हूँ, सृष्टि के पहले जो था वही मैं है। असत वा इदम अग्र आसी, तैतृय उपनिषद ने कहा जो आगे था वही मैं हूँ। पृथकत्वेन, कोई भगवान की पूजा किसी भी फॉर्म में कर सकता है, जैसे ठाकुर रामकृष्ण का अभी हम बता रहे थे कि वो काली के रूप में पूजा करते थे। पृथकत्वेन, भगवान मेरे से डिफरेंट है, ऐसा करते हैं ना, मेरे से डिफरेंट है। और तीसरा बहुता विश्व तो मुखम, अनेक रूप, सारा विश्व ही उनका रूप है, सब कुछ भगवान ही है, सब वासुदेव ही हैं, सब वासुदेव ही। तो एकत्वन, एकत्वन मैं वासुदेव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, एकत्वेन वासुदेव कौन है, मैं वासुदेव हूँ। पृथकत्वेन, आप वासुदेव हो, हमसे भिन्न अलग, आप वासुदेव हो। और विश्व तो मुखम, सब वासुदेव है। एकत्वेन मैं वासुदेव हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, पृथकत्वेन आप भी वासुदेव हो। और बहुधा विश्वतो मुखम, सब वासुदेव हैं, सभी वासुदेव हैं। तो आंख बंद करके एकत्व देखो, पूजा घर में भगवान को पृथक रूप से देखो, और इस जगत में जाओ तो सबको वासुदेव रूप में देखो। देखो ये है, आंख बंद करके एकत्व देखो, पूजा रूम में अगर जब जाओ तो पृथक रूप से देखो, और जब जगत में जाओ तो अब सब कुछ वासुदेव देखो। ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए। आप लोग मनन कीजिए इसके ऊपर में, फिर और आगे देखेंगे हम लोग। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम।